Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योऽमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रातस्मरणीय अर्चनीय वन्दनीय ब्रह्मलीन परम गुरुदेव प्रेमपुरी जी महाराज तथा ब्रह्मलीन सद्गुरु चरणों में कोटिशः प्रणाम। परम प्रेमास्पद सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा भक्ति मति मातृशक्ति गत कुछ वर्षों से हम लोग प्रातःकालीन प्रवचन सत्र में ब्रह्म विद्या के साक्षात जनक उपनिषदों का विचार करते आ रहे हैं। ईशादि क्रम से हम लोग तीन उपनिषदों का विचार प्रवचन सत्र में कर चुके हैं। ईश, कठ और केन इन तीन उपनिषदों का विचार यहां पर हो गया है। इस वर्ष चतुर्थ उपनिषद अध्ययन परंपरा से प्रश्न उपनिषद होती है। प्रश्न उपनिषद का विचार यथामति हम सब मिलकर के करेंगे। इसमें आप सब जानते हैं कितने वेद हैं, चार वेद हैं और हरेक वेद के दो दो प्रकरण हुआ करते हैं। एक का नाम है कर्मकांड, दूसरे प्रकरण का नाम है ज्ञानकांड। और वेदों के प्रकारांतर से और वेद ये नाम होता है मंत्र तथा ब्राह्मणात्मक दो भागों में वेद विभक्त हैं और मंत्र ब्राह्मणयोर वेद संज्ञा ये कहा जाता है। मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों का भी वेद ये नाम है और प्रत्येक वेद में मंत्र और ब्राह्मण ऐसे दो भाग हुआ करते हैं और मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों में भी कर्म प्रकरण कर्मकांड तथा ज्ञानकांड हुआ करता है। तो ये दस उपनिषदों में कई उपनिषद हैं अथर्ववेद की हैं, एक ही उपनिषद हैं जो ऋग्वेद की हैं। चार वेद हैं जो ऋक् यजु साम अथर्व नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ऋग्वेद की उपनिषद हैं दस उपनिषदों में जिस पर शंकराचार्य जी का भाष्य है ऐतरेय उपनिषद और बाकी यजुर्वेद की उपनिषदें हैं ईशावास्योपनिषद कठोपनिषद तैतरीय उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद ये चारों उपनिषदें यजुर्वेद की हैं और सामवेद की हैं केनोपनिषद छांदोग्य उपनिषद और अथर्ववेद की हैं ये प्रश्न उपनिषद मुंडक उपनिषद मांडुक्य उपनिषद ये अथर्ववेद की हैं। तो इस प्रकार ये जो जिस उपनिषद का इस सत्र में हम लोगों को विचार करना है ये उपनिषद होगी चार वेदों में से कौन से वेद की अथर्ववेद की और अथर्ववेद में भी दो भेद हैं एक आपका वो कर्मकांड मंत्र और ब्राह्मण तो मंत्र भाग की तो अथर्ववेद में उपनिषद आती है मुंडक उपनिषद और ये प्रश्न उपनिषद को माना जाता है अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग की और मंत्र और ब्राह्मण में माना जाता है आपस में संबंध व्याख्ये व्याख्यान भाव। तो व्याख्येय कहा जाता है जिसका व्याख्यान किया जाता है उसे व्याख्येय कहते हैं जिसकी चर्चा की जाती है जिस का विचार हो रहा है वो व्याख्येय विषय है। तो मंत्र में संक्षेप में जिस अर्थ को बताया जाता है उसी का विस्तार से कथन किया जाता है ब्राह्मण के द्वारा। विस्तार से कहने वाले का नाम है व्याख्यान और संक्षेप में किसी अर्थ को बताने वाले ग्रंथ को कहा जाता है व्याख्या। मंत्र में वेदों के संक्षेप में जिस अर्थ को बताया गया है उसी अर्थ को खूब विस्तार से ब्राह्मण भाग में बताया जाता है इसलिए मंत्र को कहा जाता है व्याख्येय वो संक्षेप में अर्थ को बताने वाला होता है और विस्तार से बताता है ब्राह्मण भाग। तो अथर्ववेद के मंत्र भाग में आई हुई प्रसिद्ध उपनिषद है मुंडकोपनिषद उसमें जो अर्थ संक्षेप में कहा गया उसी अर्थ को विस्तार से बताने के लिए प्रश्नोपनिषद है। इसलिए प्रश्नोपनिषद को माना जाता है व्याख्यान और मुंडक उपनिषद को माना जाता है व्याख्येय। उसका व्याख्यान किया जा रहा है। मुंडक उपनिषद में संक्षेप में जिस अर्थ को बताया उस अर्थ को विस्तार से बता रही है प्रश्न उपनिषद। और उपनिषद ये नाम आप देखेंगे प्रत्येक उपनिषद के साथ जुड़ा हुआ है। 10 उपनिषदों में ईशा वाष्योपनिषद, इसमें ईशा वाष्य छोड़ दीजिए तो उपनिषद, केन उपनिषद में केन को हटाइए उपनिषद, तो उपनिषद एक सामान्य नाम है। उपनिषद इस शब्द का अर्थ हुआ करता है एक उपनिषदों में जो शब्द क्या नाम संस्कृत में जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं अलग अलग धातुओं से अलग अलग प्रत्यय करने पर शब्द बनते हैं। तो एक धातु है सद धातु, उसके तीन अर्थ होते हैं। एक विशरण सदली विशरण गति अवसादनेशु, तो विशरण शब्द का अर्थ तो तीन अर्थ हुए, एक विशरण, दूसरा गति और तीसरा अवसाद। तो विशरण शब्द का अर्थ होता है विनाश और गति का अर्थ होता है प्राप्ति। गति का अर्थ गमन भी है, गति का अर्थ प्राप्ति भी है। और विशरण का अर्थ हुआ विनाश, गति का अर्थ हुआ प्राप्ति, और अवसादन शब्द का अर्थ होता है शिथिलीकरण, ढीला करना। शिथिलीकरण में शिथिल शब्द का अर्थ होता है ढीला, और शिथिलीकरण का अर्थ होता है ढीला करना। तो ये उपनिषद में सद धातु का तो अर्थ हो जाएगा ये तीन, नाश प्राप्ति और ढीला करना। और उपनिषद शब्द का अर्थ निकलता है उसे कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय करने के बाद ये तीनों क्रिया करने वाला, विनाश करने वाला, प्राप्त कराने वाला, और ये शिथिल करने वाला ग्रंथ। ऐसे सीधे सीधे जो विनाश करें, किसको विनाश करें, तो आपके दुख तथा दुख के कारण को जो नष्ट करें उसका विनाश करें उसे उपनिषद कहते हैं। आपके दुखों की दुखों का अत्यंतिक नाश करने वाली, ये उपनिषद शब्द का अर्थ निकला। उपनिषद शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, इसलिए हिंदी में उसका अर्थ निकलेगा आपके दुखों का आत्यंतिक विनाश करने वाली, एक अर्थ निकलता है। दूसरा एक अर्थ निकलता है आपको प्राप्त कराने वाली। तो क्या प्राप्त कराती है, तो ब्रह्म भाव प्राप्त कराने वाली, ब्रह्म भाव यानी निरतिशय आनंद। तो निरतिशय आनंद की प्राप्ति करा दें, आनंद की प्राप्ति करने की तीव्र इच्छा वाले लोगों को आनंद की प्राप्ति करा दें जो, उसे भी उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद शब्द का एक अर्थ निकलता है शिथिल कर दें। तो जो आपके जन्म मरण रूप दुख को शिथिल कर दें, ढीला कर दें, ये जिस लोक में हम लोग रहते हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक इसका नाम इसलिए है कि यहां पर एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। बाहर निकली हुई श्वास अंदर जाएगी इसका भी कोई निश्चय नहीं है, कब जाना पड़े। प्रारब्ध समाप्त तो हो जाए तो यहां बैठे बैठे ही लुढ़क जाए। तो जहां पर प्रतिपल मृत्यु का भय लगा रहता है, कोई भी क्षण ऐसा रिक्त न जाता हो जो आपको आश्वस्त करे कि निश्चित रूप से इस क्षण में मैं मरूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कह नहीं सकता, गारंटी नहीं दे सकता कि इस क्षण नहीं जाना है। तो प्रतिपल मृत्यु का भय जिस लोक निवासियों को निश्चित रूप से लगा रहता है उस लोक का नाम है मृत्यु लोक। लेकिन गारंटी के साथ कह सकते हैं कि स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में मृत्यु वहां के नागरिक की इतने समय के लिए निश्चित रूप से होगी ही नहीं, ऐसा निश्चय है वहां। ऐसा निश्चय यहां मृत्यु लोक में नहीं है। इसलिए स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक की नागरिकता यदि मिल जाए तो जिसको ब्रह्म लोक का ग्रीन कार्ड मिल गया तो ये समझ लो कि गारंटी मिल गई आपको कि जब तक चंद्रमा और सूर्य हैं तब तक आप मरने वाले नहीं हैं। ब्रह्मलोक की नागरिकता मिलने का अर्थ यही है। वहां जाने वाला वेदों में लिखा है कि इस कल्प में वापस नहीं आता, उमरता नहीं है। और कठोपनिषद में आपने सुना है कि नचिकेता यमराज जी को कहते हैं कि स्वर्ग लोक में आप सहसा विनाश लीला नहीं करते। यद्यपि इसी कल्प में मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक के नागरिकों को वापस आना पड़ता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, लेकिन जैसे मृत्यु लोक से अचानक ही जाना होता है ऐसा अचानक वहां से जाना नहीं, आना नहीं होता यहां। इसलिए स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक के प्राप्ति के साधनों को भी कहा जाता है एक प्रकार से ब्रह्मलोक की प्राप्ति का जो साधन है और स्वर्गलोक की प्राप्ति का जो साधन है उसे भी उपनिषद शब्द से कहा जाता है। तो आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कराने वाला कौन है, आपको निरतिशय आनंद की खोज है उसे प्राप्त कराने वाला कौन है, तो उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद शब्द से तो परिचय हुआ लेकिन वो उपनिषद का अर्थ क्या होगा, कौन वो वस्तु है, कौन सा पदार्थ है जो आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कराता है, आपको निरतिशय आनंद की उपलब्धि कराता है, ऐसा पदार्थ कौन है, वो साधन कौन है, उसको जानते हैं। उपनिषद तो शब्द हुआ, उपनिषद शब्द का अर्थ कौन है, ये कहेंगे दिखाओ कौन सा है उपनिषद, तो वो क्या है? हाँ, वो है ब्रह्म विद्या ज्ञान। और ज्ञान कहाँ रहता है, ज्ञान का एड्रेस क्या है, रेसिडेंस है, ज्ञान भगवान में रहता है। तो ज्ञान ये होता है, जैसे शिशु अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ये शरीर की अवस्थाएं, ये कहां रहती है शरीर की अवस्थाएं, जो शरीर का परिणाम है वो शरीर में रहेगा, परिणाम परिणामी में रहता है। ऐसे ज्ञान आपके मन का परिणाम है, एक वृत्ति है मन की, मन की वृत्ति है ना, प्रमाण से उत्पन्न हुई जो आपके मन की एक वृत्ति है उसका नाम है प्रमा, उसी का नाम है ज्ञान, वह मन का परिणाम है। वो कहाँ रहेगा, तो शरीर का परिणाम शरीर में रहता है, मन का परिणाम मन में रहेगा। तो यदि उपनिषद शब्द का अर्थ आपके दुखों का आत्यंतिक विनाश करने वाला और आपको निरति से आनंद उपलब्ध कराने वाला है, ये उपनिषद शब्द का अर्थ है। उपनिषद तो शब्द हुआ और उसका अर्थ हुआ, ये आपके दुखों का विनाश करने वाला, आपको निरति से आनंद उपलब्ध कराने वाला। और वो कौन है, तो ज्ञान है। और वो ज्ञान कहाँ रहता है, उसको खरीदना चाहेंगे, मेडिसिन खरीदना चाहेंगे तो मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, जहां रहता है। ऐसे ज्ञान वो है आपके चित्त की वृत्ति, वो चित्त में रहेगा ज्ञान। और ये ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान, तो ज्ञान ज्ञानी तो सब है, ऐसा कोई नहीं है। सप्तसती में लिखा है कि ज्ञानम अस्ति समस्तस्य प्राणिनः विषय गोचरे, कहते सभी प्राणियों को ज्ञान है, ज्ञानहीन कोई होता ही नहीं है। मन है तो मन का परिणाम ज्ञान रहेगा ही, लेकिन सबको ज्ञान है विषय विषयक, विषय गोचरे यानी विषय, कहते हैं दृश्य अनात्म पदार्थों को, शब्द आदि को, पशु पक्षियों को भी ज्ञान है। वो अपने जीने के लिए उपयोगी ज्ञान, क्या खाने से हम स्वस्थ रहेंगे, क्या खाने से अस्वस्थ होंगे, ये ज्ञान पशुओं को पक्षियों को भी अच्छी तरह से है। कौन हमसे प्रेम करता है, कौन हमें समाप्त कर सकता है, इसका ज्ञान पशु पक्षियों को अच्छी तरह से होता है। शत्रु मित्रता का ज्ञान ये सब लोगों को ही है, लेकिन ये ज्ञान आपके दुखों का आत्यंतिक विनाशक नहीं है, वो उपनिषद शब्द का अर्थ नहीं है। और आपको इस प्रकार के ज्ञान से निरति से आनंद प्राप्त भी नहीं होगा। ये ज्ञान तो अनादिकाल से हरेक जन्म में हम लोगों को होता ही जा रहा है, ये हमारा अपना है, ये पराया है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये हमारा घर है, ये दूसरे का घर है, ये ज्ञान तो हो ही रहा है, लेकिन इस ज्ञान से दुख का नाश और सुख की प्राप्ति नहीं होती। वो ज्ञान उपनिषद शब्द का अर्थभूत वो है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति, ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, इसका ज्ञान। वो ज्ञान आप उपनिषद शब्द का अर्थ है, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति मन की, और उससे ये ज्ञान जिसके चित्त में उत्पन्न होता है, उसे फिर वो दुख नहीं होता। घड़ी मोबाइल आजकल वाटरप्रूफ बनाता है ना, पानी में पड़ने पर भी पानी का दुष्परिणाम, पानी के संपर्क से होने वाला जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होता उन पर। ऐसे ये ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार जो उपनिषद शब्द का अर्थ है, ये क्या करता है, जिसके चित्त में उत्पन्न होता है उसे दुख प्रूफ बना देता है। वो दुख प्रूफ बनने वाला फिर उसे दुख स्पर्श नहीं करता, शरीर में मन में दुख आ भी जाए, बाहर एक प्रकार से सभी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित हो जाए और सामान्य व्यक्ति जो ज्ञान से रहित हैं वह हार्ट फेल होकर के एक समय जा भी सकता है, ऐसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह विचलित नहीं होता। वो दुख बाहरी दुखों से उसे कोई स्पर्श नहीं हो पाता, यही दुखों का नाश है। उपनिषदों में लिखा है न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, कहते हैं ब्रह्मज्ञानी जिसके चित्त में अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक उपनिषद शब्द का अर्थभूता वृत्ति उत्पन्न हुई है, ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह दुख से लिपायमान नहीं होता, यानी दुख उसे स्पर्श नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, कहते वो बाह्य है, का मतलब दुख जिसमें रहता है। दुख कहाँ रहता है, तो दुख रहता है मन में, वह मन रूपी क्षेत्र का धर्म है और आप क्षेत्रज्ञ हैं, और क्षेत्रज्ञ को भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, यानी परमात्मा है, ब्रह्म है, और ब्रह्म में दुख कहीं पर भी बताया नहीं गया है वेद के किसी भी वाक्य के द्वारा, ब्रह्म में कोई दुख का वर्णन नहीं हुआ है, इसलिए ब्रह्म दुख रहित है। और वो दुख रहित जो ब्रह्म है